તારીખ 4-10-1990 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 62
तो बात तो यहाँ से शुरू होती है, बात सामने से शुरू होती है। तो बाबू जी ने भी यही कहा कि मुमुक्षों के लिए परमात्मा को पहचान करते हैं। महात्मा है वो अपनी पहचान मुमुक्षों को देते हैं, तो बात तो नहीं कही इधर पर कुछ कह दे रहे कि हम महात्मा है, हम ऐसे हैं, ऐसा अनुभव हुआ है, ऐसा आनंद आया है, उनको निर्कल दशा हुई है, उनको ये हो सकता है बताने दें हमें क्या करना। क्योंकि बात सामने से नहीं रखी है, कृपा मुमुक्षु के नेत्र नेत्र मैंने ज्ञान नेत्र की बात है, कि मुद्रा देखने की बात नहीं है। मैं सिर्फ मुद्रा देखने से नहीं चलता, ऐसे तो बहुत से अन्य मुद्दों में विभिन्न जगह पर ऐसी मुद्रा तो अच्छे अच्छे मुद्रा के धारक तो मनुष्य हो जाते हैं, त्यागी हो, सन्यासी हो, मुनि हो, ऋषि हो, यति हो, ऐसे कोई महापुरुष या महात्मा होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है भी, लेकिन इससे इसका निश्चय होता तो फिर वो नेत्र कैसे हैं और किससे निश्चय होता है, ये बात हमें समझनी चाहिए, समझनी चाहिए। उतना ही नहीं, हमें उस नेत्र में किस प्रकार की ज्ञान की योग्यता में, जिज्ञासा की योग्यता में आना चाहिए। तो ये जो आत्मा और आत्मकल्याण ऐसा जो अध्यात्म का विषय है, इस विषय को आध्यात्मिक विषय कहते हैं। ग्रंथों में दो प्रकार के विषय हैं, आगम के और अध्यात्म के। आगम के बहुत विस्तार वाली बहुत सी बातें हैं, चारों अंगों में, और चारों अंगों में अध्यात्म भी है। चारों अंगों में दोनों विभाग है, इसमें भी आगम की जानकारी तो बहुत से सूक्ष्म वाले मनुष्य को हो सकती है, और बहुत से आगम की बातें वो कर सकते भी हैं, और अध्यात्म की बातें भी बहुत से कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हो सकती है, और वो भी बातें करने वाले होते हैं। तो जिसको आगम का विषय हो और अध्यात्म का विषय नहीं हो, इसके प्रति तो हमें कोई विचार नहीं करना है, कि जिसके पास अध्यात्म का विषय नहीं है उसको कोई स्वानुभव हो या उसको कोई मोक्ष मार्ग हो, ये बात तो हमें सोचनी नहीं है। क्योंकि विद्वान का पंडितों का एक वर्ग हो जाता है, तो आज उनकी बहुत से प्रकार के कर्मानुयोग के कर्मानुयोग के कर्मानुयोग के कर्मानुयोग की बातें करते हैं। और जो वक्ता अध्यात्म की बातें करते हैं, वहां ऐसा संभव भी है और ऐसी शंका भी, ऐसा विचार भी होता है कि शायद शायद अध्यात्म तत्व की प्राप्ति की हो और अध्यात्म की बातें करते हैं। वहां ऐसा भी होता है कि अध्यात्म तत्व की प्राप्ति नहीं भी हो और अध्यात्म की बातें सुनी सुनाई पड़ी हुई करते हो। उसमें भी एक दूसरा भेद है कि जिसे अध्यात्म की कुछ रुचि हो लेकिन अध्यात्म की प्राप्ति न हो, ऐसे लगता है ये अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म की बात करना करने वाले के दो विभाग हैं, एक तो जिसने सीखी है बात वो करते हैं, सीखी सिखाई बात, और एक के पास सीखी सिखाई नहीं होते हुए भी जहां जहां सदग्रंथों में अध्यात्म विषय चलता है वहां उसकी रुचि सतेज होती है और अपने योग्यता के अनुकूल अध्यात्म की चर्चा और अध्यात्म पाठक करेंगे। और एक अध्यात्म तत्व की प्राप्ति वाला भी करेगा, ये तीन भंग हो जाए। तब हम कैसे पहचाने मूल समस्या को देखें तो सारे अध्यात्म के प्रकरण में सब जो बात है तो मुद्दे की बात है कि सारे अध्यात्म के प्रकरण में आध्यात्मिक विषय की सूक्ष्मता अधिक से अधिक सूक्ष्मता सबसे अधिक सूक्ष्मता स्वरूप प्राप्ति की विधि के विषय के विषय में है इससे अधिक सूक्ष्मता कहीं नहीं है। भगवान अमृतचंद आचार्य ने समय सार में गुरु कलश में आत्मनः तत्व कहा है मोक्ष मार्ग कहो मोक्ष मार्ग रूप विधि कहो मोक्ष मार्ग एक नाम है उपाय का इलाज का लेकिन इसको विधि के दृष्टिकोण से देखो तो एक स्वरूप प्राप्ति की ये सुविधि है और ये सुविधि का जो विषय है वो सबसे सूक्ष्म है इसलिए उनको आत्मनः तत्व ऐसा कहा है। आत्मा तो तत्व है ही लेकिन एक तत्व का कोई तत्व है तो यही है इसलिए उनको आत्मनः तत्व कहा है। ये शब्द दो जगह प्रयोग किया है एक 239 कलस में कहा है और एक 246 कलस में दो जगह ये शब्द का प्रयोग हुआ है और बहुत गहरी बात मान रही भी है। तो जिस वक्ता को अपने वक्तव्य में ये विधि का विषय आता है यही अध्यात्म तत्व की उसको प्राप्ति हुई है ऐसा यहां से निश्चित होता है। तो ये विधि की बात करता है और सही बात करता है कि ऐसे स्वरूप की प्राप्ति होती है ऐसे अंतर्मुख हुआ जाता है ऐसे स्वसन्मुख हो सकते हैं ऐसी जो बात आती है ये बात को जो कुछ ढूंढने वाला हो खोजने वाला हो उसकी नजर मार जाती है। जिसको खोज है कि मुझे मार्ग कैसे मिले इसकी जिसे खोज है उसको मार्ग दर्शाने वाला मिले तो उसको पता चलता है। उसको किस तरह पता चलता है कि जैसे अंधार अंधेरा घोर अंधेरा हो जंगल में और इसमें एक बिजली का प्रकाश हो जाए क्षण भर के लिए तो उसको उसमें समझाना नहीं पड़ेगा प्रकाश हुआ था कि नहीं हुआ था इतना घोर अंधेरा था यदि उसमें क्षण भर के लिए बिजली का प्रकाश हुआ आकाश हुआ तो क्या उसमें कोई समझाना पड़ता है कि प्रकाश हुआ था कि नहीं हुआ था प्रकाश मैंने देखा कि नहीं देखा वैसे ये मुमुक्षु अंधेरे में खड़ा है और उस अंधेरे में उसको एक प्रकाश मिलता है कि प्रकाश किस तरह मिलता है कि जैसे ऐसा मार्ग बिजली का प्रकाश होता है जैसे मार्ग बिजली का जंगल में भी रास्ता इधर है ये रास्ता उधर जाता है यहां से बाहर निकल जाए ऐसा प्रकाश दिखता है तब उसको पता चलता है कि कहने वाला अवश्य ज्ञानी पुरुष है ऐसी बात हमने कहीं से नहीं सुनी थी ये बात हमको जो मिली हमें रास्ता मिलता है रास्ता मिलता है इससे सूचित होता है कि अवश्य ज्ञानी पुरुष है हमें किसी से पूछना जाना नहीं है। अब इसको कौन कौन मानते हैं कौन कौन नहीं मानते ये हमारे लिए कोई देखने का विषय नहीं विचार करने का भी हमारे लिए वो विषय नहीं रहता है क्योंकि विश्व में ऐसा बनता है जगत में कि हजारों लाखों माने लेकिन महात्मा नहीं हो और कोई नहीं माने तो भी महात्मा हो गए नहीं माने नहीं इसको अद्भुत करे, अपमान करे, निकाल दे रहे, आने नहीं देवे, बैठने नहीं देवे, खाने नहीं देवे, फिर भी हो सकता है कभी सत्पुरुष, क्योंकि तो ये का खेल है, ये कोई महात्मा की निशानी नहीं है। इस तरह से नेत्र देखते हैं महात्मा को, मनुष्य के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं, वो कैसे है। बात तो बहुत सुंदर है, ये बात बहुत प्रसिद्ध है कृपाल जी की, मोक्ष के नेत्र महात्मा को सामान्य अर्थ में ऐसे कर लेते हैं कि जो योग्य मोक्ष है, लायक मोक्ष है, सुपात्र है, वो पहचान लेते हैं। लेकिन सुपात्र कैसे और पहचानने का विषय भी कैसा, इसकी गहराई में जाए तो ये बात है स्पष्टता है।
खोजने वाला पहचान
जी,
खोजने वाला पहचान क्या,
खोजने वाला पहचानता है, खोजी जीवे वाली मरे, मैं आपसे मार्ग निवास करने वाला मर जाएगा और सत्य की खोज करने वाला, मार्ग की खोज करने वाला जिंदा जाएगा। खोज करना अपना खोज का विषय होना चाहिए और वो बात अपनी खोज में हो गए और सामने आवे नहीं मिले ऐसा नहीं बनता, और सामने बात आती हो और हमारी खोज नहीं हो तो हमें पता चले कि बात भी नहीं
करती। ऊपर पर दिखाई
तो बताने वाले तो होते हैं, बताते भी हैं, लेकिन हमने रोग संज्ञा से माने, ऐसे बड़े बड़े लोग मानते हैं, ऐसे बड़े बड़े विद्वान जाने माने मानते हैं, जब तो ये सत्पुरुष होंगे ही, होंगे तो होंगे लेकिन तेरे को इतना देना नहीं है, ये बात भी उतनी सही है। ऐसे दूसरों के पीछे पीछे चलना उनको गाडर की बुद्धि है, गाडर कहते हैं ना, गाडर लोग क्या करते हैं, एक के पीछे जाते हैं, वो जाते हैं तो हम इसके पीछे पीछे जाते मार गए था, ये बात आखिरी क्वेश्चन जो चला था तब उसमें ऐसी बात नहीं,
खान का विषय है
पहचानने की परम तीव्रता रखना, खोज भी कैसी, पहचान करने के लिए वृत्ति भी कैसी, पहचानने की वृत्ति बहुत तीव्र पैनी बुद्धि हो जानी चाहिए, इसको बहुत सूक्ष्म शिक्षण हो जाए तो पता चलता है। ऐसा नहीं हो कि परम प्रयोजन का विषय अनंतकाल में बार सत्पुरुष मिले हैं, एक बार भी पहचाना नहीं, अगर एक बार पहचाने तो इसका फल मोक्ष है, निर्वाण है, प्रगत मोक्ष के करतार है, गुरु विभिन्न स्थान के करतार है, वहां तक दिया कि नहीं दिया है, मंगलाचरण सत्पुरुष की बात है।
वर्तमान स्थिति में दुख लगता हो और उसको छोड़ने का काम नहीं हो और फिर खोजे तो मिलते हैं, वर्तमान स्थिति में दुख लगे नहीं और खोज के लिए निकले
मनुष्य ही नहीं है, बात तो यही है कि वर्तमान जो परिणाम कर रहे हैं उस परिणाम में अगर दुख नहीं है तो साता है, दोष है, मोक्षता आएगी कहां से, और इसको टालने के लिए प्रयत्न भी होगा, महात्मा में जिसका दृढ़ निश्चय होता है ऐसा पहचान करके, ये बात अभी यहां से आगे चलती है, ऐसा पहचान करके यथार्थ निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, उसे महाशक्ति दूर होकर पदार्थ का निर्णय हो जाता है। बीच का जो कारण का हानि हो गया प्रतिबंधक कारण का, उसके जो दूसरा प्रतिबंधक कारण रह सकता जिसका दर्शन मोह का नाश हुआ है, ऐसे पुरुष को पहचाना, निर्मोही पुरुष को पहचाना। तो पहचानने वाले को भी महाशक्ति छूट जाएगी।
यहाँ पर प्रत्यक्ष शत्रु की बात
है, प्रत्यक्ष की जो नहीं पहचान है तो परोक्ष की तो पहचान नहीं कर सकते। जो प्रत्यक्ष को नहीं पहचानता वो परोक्ष को पहचानेगा कैसे, ये तो और कठिन विषय है। अगर प्रत्यक्ष नहीं हो, अब दूसरा ठीक है, चलो प्रश्न निकला तो अच्छा है कि मानो कि कोई वर्तमान में सत्पुरुष हमारे सामने नहीं है, फिर भी हमारी अंतर योग्यता ऐसी होगी कि हम परोक्ष किसी सत्पुरुष के वचन को पढ़कर के पहचान सके, तो ये तो इससे भी आगे की उत्कृष्ट योग्यता होगी। क्या तो इससे बढ़िया योग्यता होगी कि जो पुरुष प्रत्यक्ष नहीं है उसको पहचान लिया। प्रत्यक्ष पहचानना आसान है, परोक्ष पहचानना तो इससे ज्यादा कठिन है। पहचानने की बात है, ये कृपालु देव के हजारों अनुयायी है इसलिए कृपालु देव ज्ञानी पुरुष है, सो बात नहीं है। मेरी पहचान का चिंता विषय है कि नहीं, मेरा मित्र कहता है कि नहीं, मेरी नजर कहती है कि नहीं, मेरा ज्ञान कहता है, ये बात है। जैसे पदार्थ का निश्चय जब होता है आत्मस्वरूपता, तो ऐसा ही भाव आता है कि जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा इसलिए मेरा आत्मा ऐसा नहीं है, सत्शास्त्र भी ऐसा ही आत्मा कहता है इसलिए मेरा आत्मा ऐसा नहीं है, पर ज्ञानी प्रभु ऐसा आत्मा कहते हैं सदगुरु इसलिए मेरा आत्मा ऐसा नहीं है। अब मैं कहता हूं कि मेरा आत्मा ऐसा है और मेरा ज्ञान में मेरा आत्मा ऐसा आता है, उसकी साक्षी ये तीनों देते हैं। मेरे ज्ञान के साक्षी के पूरक है, मेरे ज्ञान के पूरक है साक्षी के रूप में, इसलिए वो सही है, ऐसा अपने आधार से निश्चय आता है। जैसे पदार्थ का स्वरूप का अपूर्व पदार्थ का ऐसे निश्चय आया, वैसे ही सत्पुरुष का आना चाहिए। तो माने नहीं माने मेरे कोई मतलब नहीं है, मैंने जो निश्चय किया है वो बात बिल्कुल अपने ज्ञान से किया है, इसमें कोई कृपा
उधर से मिलान नहीं होता, इधर से मिलान करना है,
इसमें भी लोग है। तो कोई ऐसे अज्ञानी पुरुष में ज्ञानी की मान्यता करते हैं और बदल के नहीं होते
हैं,
लेते हैं उनको पहचान नहीं होती, लेकिन जैसे कैसे भी उनकी मान्यता है, हर बैठ गया है कैसे भी बैठ गया, कोई कारण से कोई नहीं कैसे भी, और फिर उसको नहीं छोड़े। पर सत्पुरुष वाकई कोई सत्पुरुष कहे तो भी सरकार नहीं करे, ऐसा कोई बनता है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि इनकी दृष्टा बहुत अच्छा है, अच्छी है और सही है, तो बात भी ये तो सही ज्ञान की बात है, सही पहचान की बात है। निमित्त भी सही है, उपादान भी सही है, दोनों में से एक में फर्क नहीं है। निमित्त भी सत और उपादान भी सत, सत ऐसा होता है। तो उस तरह से महात्मा में जिसका दृढ़ निश्चय हुआ है होता है, उसे तो महाशक्ति दूर भी हो जाती है और उसे पदार्थ का निर्णय भी हो जाता है, उसको नहीं होता ऐसा बनता क्योंकि तो जिसका निर्णय किया वो भी स्वयं पदार्थ है, वो संज्ञा से नहीं माना, पहचान पहचान करके माना है, तो उनको स्वरूप पर स्वरूप का निर्णय अवश्य हो जाएगा क्योंकि ऐसा ही अपना स्वरूप है। जैसा लोग इनका जैसा महापुरुष का स्वरूप है अंतरंग में, वैसा ही मेरा स्वरूप है, इसे पहचानने में फिर क्या देर लग सकती है। पहचानने का कोई अवरोध होता
सेम शब्द है गुरुदेव नो सपोज में सेम शब्द है उनसे राग नो भाव करी उनसे राग नो भाव करी या मोहा शक्ति मटी
मोहा शक्ति में भी इससे ज्यादा लिया था अच्छे कारण में स्पष्ट अनु भगवान से प्रति स्पष्ट रागांश है नहीं अनुभवान तो ज्ञानांश होता है इससे प्रति दो बात कैसे हो सकती है उससे व्याकुलता मिटती है और पदार्थ का निर्णय मोहा शक्ति का मिट जाना वैज्ञानिक पुरुष का निश्चय उससे आकुलता मिटती है क्योंकि अभी फिर उनको मेरा स्वरूप कैसा ये बात नहीं रही उसको असमाधान की कोई जगह नहीं रही क्योंकि जो पदार्थ है अपूर्व पदार्थ है ये मूल में सर्वांग समाधान रूप है ऐसा है अपना स्वरूप तो अपना स्वरूप है वो सर्वांग समाधान रूप होने से उसकी पहचान हो जाने से मैं ऐसा ही हूं तब उनको कोई असमाधान का दुख होता मुझे कोई मंजूर के लिए इससे व्याकुलता मिटती है पर निशंकता आती है कि ऐसा ही मेरा स्वरूप है ये निशंक में ऐसा देव गुरु शास्त्र का नंबर पीछे आता है अपना स्वयं के पहचान का नंबर पहले आता है उतनी निशंकता आती है उनको कहीं निशंका पड़ती है फिर अनुभव होता है तो निशंक की दर्शिता होता है इसके पहले स्वरूप निश्चय में निशंकता उत्पन्न होती है उसमें उसने इसलिए अपनी बातें बात कर दी थी कि जिसको सम्यक दर्शन के काल में स्वानुभव में अपना आत्मस्वरूप अनुभव में आया उनको ये बात का पता चल जाता है कि जैसा मेरे पदार्थ निर्णय में आया था वैसा अनुभव में आया है उसमें और उसमें कोई फर्क भले वो निर्णय परोक्ष ज्ञान में था और स्पष्ट अनुभवांश था पर ये निर्णय बिल्कुल अति व्यापक भाव नहीं था सारे धर्म और अनुभव के काल में ये दो अंतर है इसमें विषय का अंतर है विषय का अंतर नहीं है इस बात समझ में आ जाती है इसलिए जो निर्णय है उसमें कोई निशंकता है कोई निशंकता नहीं उसे व्याकुलता मिटती है और निशंकता आती है जिससे जीव सर्व प्रकार के दुखों से निर्भय होता है जिससे जीव सर्व प्रकार के दुखों से निर्भय हो जाता है निशंकता से निर्भयता उत्पन्न होती है इसको सिद्ध कर दिया इधर उन्हीं दशा के बाद नहीं है कि उन्हीं को जंगल में अंधेरे में बाघ से सर्प देख के निर्भयता आती वो बात नहीं है ज्ञान होते ही सम्यक दृष्टि को ज्ञानी पुरुष को भय होता है निर्भय हो गया यहां तो निर्णय की बात किया है यहाँ तो निर्णय होते निर्भय हुआ क्योंकि निर्णय में निशंक हुआ और निर्णय में निर्भय भी हुआ तो निशंक हो गए वो निर्भय हो गए ही निर्भयता का बहुत बड़ा आधार स्तंभ है उस स्वरूप की शाश्वतता का है अपना जो आत्मस्वरूप है वो वैसा का वैसा पूर्ण रूप से शाश्वत है अनादि अनंत वैसा का वैसा एक रूप है परिणाम भाव की व्याख्या कहीं नहीं है जो एक रूप रहता है उसको परिणाम भाव कहते हैं एक रूप जो रहता है हमेशा रहता है उसमें ये भी एक विचार आता है अरे भूतकाल में तो मेरे बहुत भाव में है उस सब भाव में मैं जन्म लिया मरा अभी भी जन्मा हूँ अभी भी मरने वाला हूँ ये बात सब चीज वो कहाँ गई वही तो सबसे ज्यादा ज्यादा मृत्यु का होता है। इससे ज्यादा कोई भाव भय है नहीं जगत में, मृत्यु से ज्यादा कोई बड़ा भय नहीं। तो इतने मरण हुए, अब भी मरण आने वाला भी है, इसका भय भी था, अब क्या कहा कैसे ही है, गायब कैसे हो गया। मैं तो शाश्वत हूँ, मेरा जन्म मरण कभी हुआ ही नहीं, मैंने ऐसा माना था ये मेरी भूल थी, लेकिन मेरा जन्म मरण कभी हुआ नहीं। और यह भाव भी मेरा नहीं है कि जिसमें एक को एक प्रश्न को जन्म कहते हैं लोग, मैं नहीं हूँ। लोग कहते हैं एक प्रश्न को जन्म, लोग कहते हैं जी मेरा नहीं, ये भाव ही मेरा नहीं है, मैं इस भाव रूप हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। सूर्य को देखते ही उसको नहीं कहते हैं, और नहीं देखते ही उसको अष्ट कहते हैं। सूर्य का उदय अस्त होता है क्या, सूर्य उदित होता है क्या, कि नजर में नहीं था वो नजर में आने लगा तो हमने उदय कहा, हमारी नजर में उदय हुआ है, सूर्य का उदय भी नहीं हुआ है, और हमारी नजर में अस्त हुआ है, सूर्य का अस्त। वैसे आत्मा का जन्म जिसको मृत्यु का भव नहीं, भय नहीं, उसको फिर कौन सा भय हो सकता है, वो रह सकता है, ये बताइए। जिसको देह छूटने का भय नहीं होता, उसको कौन सा दूसरा भय हो सकता है, उसके जीवन में कोई भय नाम की बात रहती ही नहीं है। ऐसे इसलिए भय चला गया है, निशंकता हुआ, निर्भय सर्व प्रकार से दुखों से निर्भय हो जाता है। दूसरे जो दुख है, ये के दुख है, व्याधि के, प्रतिकूलताएं के, निर्धनता आदि, तो इसका दुख क्यों नहीं लगता है कि जैसे मैं शाश्वत हूं, मां उसका शाश्वत पणा का आधार है, वैसे यहाँ अव्या बाधक लगाना है कि शरीर का छेदन भेदन होने कट गया, बाहर कट गया, मेरे में से कुछ कटता नहीं, मेरे में से कुछ जाता, मैं तो अव्या बात करूँ, मैं तो दूसरे का गया, मेरा नहीं, ये मेरा गया इसमें दुख है, मेरा नहीं गया इसमें दुख है ही नहीं, दुख मनुष्य के कारण। तो ऐसा अव्याबाध स्वरूप का अवलंबन रहता है, उसको किसी भी प्रकार के अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग वो आत्मा में हो ही नहीं सकता। आत्मा वैसा का वैसा एक रूप अव्याबाध में रहता हूं, ऐसा अपने स्वरूप का अवलंबन रहता है, उसको कोई दुख का कारण, किसी भी प्रकार का दुख जिससे जीव को सर्व प्रकार के दुख से निर्भय हो, और वैराग्य भी उसी आधार से हम उत्पन्न हुआ है। जब वैराग्य का कारण एक दूसरा कि कैसा आत्मा का निर्णय हुआ जिसका अनुभव होगा, क्या ज्ञान को अनुभव हुआ है, मैं परिपूर्ण, जो सभी प्रकार के पूरे गुण से संपन्न है, पूर्ण है, उसको वांछा कौन सी, पूर्णता में वांछा होती नहीं, वांछा होती वहां पूर्णता होती नहीं। तो जिस स्वरूप का निर्णय हुआ वो तो पूर्ण है, ऐसा दिखने में आता है, इतिहास में आता है, पूर्ण पूर्ण को देखते हुए ही किसी की मुझे अपेक्षा नहीं, यही उदासनता का वास्तविक है। अध्यात्म की जननी अकेले उदासीनता है, अध्यात्म की जननी अकेले उदासीनता। यहां तो कहते हैं कि उदासीनता कहां से पैदा हुई, कि अध्यात्म से उदासीनता पैदा हुई है,
अध्यात्म ही उदासीनता की जननी है, वो नास्ते से नहीं आप हमने लेना है नास्ते से। जिस पूर्ण आत्मस्वरूप जो अध्यात्म तत्व है, मेरा तत्व मेरा स्वरूप इतना पूर्ण है कि मुझे अपेक्षा ही नहीं होती, मेरे में कुछ आवे ऐसी खाली जगह अवकाश ही नहीं है कि मैं किसी को प्राप्त करूं, अन्य पदार्थ को मैं प्राप्त करूं, अवकाश मेरे स्वरूप में नहीं है। इसलिए मेरी परिपूर्णता के आगे सभी प्रकार की अपेक्षा समाप्त हो जाती है। यही उदासीनता है, यही निरपेक्षता है, और इससे भी किसी प्रकार की वांछा का दुख भी नहीं होता। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये बात माने थी नहीं, मिलने का सवाल ही नहीं है कोई चीज। इस प्रकार से जो उदासीन वृत्ति उठती है वो पूर्णता के आधार से उठती है, पूर्णता के अवलंबन से उठती है, पर उसी से निसंगता होती है। बात यह कि निर्णय होवे तो व्याकुलता मटे, निसंगता होवे, सभी प्रकार के दुख से निर्भय होवे और निसंग दशा उत्पन्न हो। निसंग दशा में ही ना लेना है, निर्विकल्प दशा है, निसंग दशा है, कि जो दशा किसी का संग करती विश्व को सारा उदय सारा देर सब यूं कर रह गया, परिणाम ने किसी का संग नहीं किया, अपने स्वसंग में चला गया।
स्वरूप
निर्णय मां निशंकता निर्भयता आवे, पर उसी से निशंकता उत्पन्न होती है, ये निशंकता अनुभव होती है, फिर निशंकता आएगी ऐसा कहते हैं। तो ये स्वरूप निर्णय के बाद अनुभव होगा उसमें निशंकता उत्पन्न हो जाएगी और वह योग्य है, और ऐसा होगा ये योग्य ही है, और ऐसा ही होगा इसका कोई दूसरा अंजाम आने वाला नहीं है। स्पष्ट मार्ग है, खुला मार्ग रखते हैं, ये ज्ञानियों के हृदय में पड़ा हुआ रहस्य है वो निकाल करके दिया है, चौराहे पर रखे हैं। बात तो ज्ञानियों के हृदय की है, टॉप सीक्रेट है, तो खुला करके महापुरुषों ने अनंत प्रमाण करके मात्र आप सर्वमोक्षों के लिए यह अति शिक्षण संक्षिप्त लिखा है। चिट्ठी में तो इतना भी लिखना चाहिए, इतना लिखा नहीं जाता, बहुत विस्तार हो जाता है। गोपाल देव के हृदय में तो बहुत भाव भरे होंगे, हम स्वाध्याय करते हैं तो भी घंटों तक चलता है, जो उसको लिखे तो किताब हो जाए, छोटे से पत्र नहीं रह सकता, उसके हृदय में तो कितना भरा होगा, कितना बाहर आया। मात्र आप सन्मोक्षों के लिए यह अति संक्षिप्त लिखा है, इसका परस्पर विचार करके विस्तार करना, क्या कहा, सिर्फ पत्र पढ़ जाना ऐसी आज्ञा नहीं है, आज्ञा तो ऐसी है कि तुम्हें विस्तार करना है, इस विषय को समझने के लिए, यथार्थ समझने के लिए विस्तार करना। ऐसा अभिप्राय रखते हैं कि उपायों में पत्र पर विस्तार नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, कृपा गुरुदेव की स्वयं की आज्ञा है कि मैं जो लिखता हूँ ये तो संक्षेप में लिखता हूँ, पत्र का प्रसंग है, तुम्हें इस विषय का विस्तार करना चाहिए, विस्तार करना और समझना, विस्तार करके समझना, ऐसा हम कहते हैं। ऐसे हमारे डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट डायरेक्टिव है, सीधी आज्ञा जिसको कहते हैं, आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है, आज्ञा का उल्लंघन करना ये मुमुक्षु का धर्म है। मुमुक्षु नहीं कहते, आज्ञा पालन नहीं करते, मुमुक्षु भी नहीं कहते।
तो राष्ट्र में ऐसे पकड़ा दे जो कपड़ा उन्होंने बोला था इतना बोलना है, कोई कोई आश्रम में ऐसा पक्का आ गई कृपाल को बोला है इतना बोलना है उसको विस्तार में मत करना विस्तार
इतनी लंबी बात नहीं दूसरे की टिप्पणी नहीं कर रही है हमारे नहीं तो लोग इतना ही देखना ऐसे गुण वो प्रारंभ में जब हमारे हाथ में ग्रंथ आया उस खंभात से एक झगड़े आते थे नाम तो एक उनके पहचान वाले बाजार के व्यापारी थे मेरे से परिचित थे तो उन्होंने बोला कि ये पुराना पुराना आया है मैंने तो अपने बिजनेस के काम से आए थे बोला कि चलो आप घर पर खाना खाने खाना हमारे साथ खाना क्योंकि इसके माध्यम से कुछ बैठना सत्संग होना होता है उनके भी बुलाया तो हम तीन थे हम बात में मुख्य थे हम दो थे तो उन्होंने क्या करेंगे इसको पढ़ने का अच्छा बनता हूँ पढ़े ग्रंथ पढ़ते हम तो बैठे कि आप पढ़ो तो मैं तो पढ़ने के साथ शुरू से थोड़ा थोड़ा विवेचन तो करता था उसको इतना उगाड़ नहीं था जितना प्रारंभ के बाद कुछ मामूली उगाड़ था फिर भी थोड़ी बात इसका अर्थ घटन क्या है ऐसा कर लेता तो फिर एक दो पत्र मैंने पढ़े फिर मैंने कहा आप पढ़ो राय भैया राय भैया तो समाची गया पत्र वासी गया समझाया थी अब पढ़ तो गए यहाँ तक कुछ समझाए बोलना चाहिए क्या हमारा ज्ञान इससे अधिक थोड़ा है तो जैसे कोई ओवर वाइज होते हैं ऐसी बात हो जाएगी इसलिए हम लोग तो पढ़ते हैं उसको विवेचन करते हुए बाद में भी हम लोग पढ़ते हैं पाठशाला बैठते हैं साथ नहीं करते होते सत्संग के लेकिन पढ़ जाते हैं चर्चा नहीं करते विवेचन नहीं करते और ज्यादा बात नहीं करते बिल्कुल बात नहीं करते ज्यादा करते बिल्कुल बात नहीं करते नियम है सिद्धांत है बोला नहीं बात शायद नहीं ये बात ठीक नहीं पढ़ जाना तो इसमें आप अकेले पढ़ो दो बाजू में बैठे पढ़ो उसको क्या फर्क है उसमें पढ़ जाने से तो कोई भी जो पढ़ा लिखा है तो पढ़ जाएगा न्यायपूर्ण नहीं लगता है ज्यादा बात नहीं होती लेकिन मुझे सभी से पता है ऐसे भी लोग हैं कि जो सिर्फ पढ़ना से विस्तार नहीं करना ऐसा मानते हैं लेकिन उन्होंने ध्यान से कृपाल देख के सभी जहां जहां आज्ञा की है उस पर ध्यान नहीं दिया है एक जगह ऐसे बताओ कि कृपाल देव ने कोई ऐसी आज्ञा की हो जब दो अभिप्राय होंगे कि विस्तार करना एक अभिप्राय रहता है विस्तार नहीं करना एक दूसरा अभिप्राय अब हम कृपाल देव की आज्ञा विचार तो विस्तार करने के लिए तो हमें आज्ञा मिलती है विस्तार नहीं करने के लिए कि एक जगह पे दिखा दो आप कहीं भी ऐसी आज्ञा की हो तो हम माने आपके सही है आपकी आज्ञा के अनुकूल चल रहे ऐसी दूसरी भी बात कहीं ऐसे समझते कि हमको तो एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए दूसरा ग्रंथ कोई पढ़ना भी नहीं चाहिए ये ग्रंथ में सब पूरा मोक्ष मार्ग आ जाता है ये बात सही है इस ग्रंथ में पूरा मोक्ष मार्ग और तत्व पूरा आ जाता है वो बात सही है और बारह अंक का सार है जो पूरी बात आती है वो बारह अंक का सार इसलिए इसमें से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्राप्त तो करें नहीं और ऐसा भी सोचे कि हमें कोई दूसरा शास्त्र नहीं पढ़ना है तो क्या वो कृपालु देव की आज्ञा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कहीं कृपालु देव ने ऐसा कहा कि मेरे पत्रांक सिवाय आपको कुछ नहीं पढ़ना है ऐसा कहा कहीं ऐसा तो एक भी वचन नहीं है तुम वो पढ़ो, तुम वो पढ़ो, तुम वो पढ़ो, तुम वो पढ़ो, ऐसे तो बात आएंगे। लिस्ट भी पीछे 20 शास्त्र का, सब शास्त्र का दिया है, पर इससे अधिक सबूत तो वो है जो आत्मसिद्धि में है। आत्मादिस्थितिर्निरूपक ते नित्य विचार मतांतर त्याग। कब विचारवान? नित्य विचारवान। तो नित्य दूसरा कोई ना कोई मेरा विकास हो, जैसे जरूरत हो। महान आचार्यों के जो शास्त्र हैं उपलब्ध है कि जिस शास्त्र को खुद कृपालु देव प्रणाम करते हैं, जिस आचार्य को प्रणाम करते थे, और जिस आचार्य को प्रणाम करते हो तो वो कहते थे कि मैं तो पावर हूं, इसके आगे तो मैं पावर का नाम देते हैं। ऐसे हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु का ग्रंथ भी उपलब्ध हो, इनका भी नाम रहे, हम उसकी उपेक्षा करें या हम उसको छुए भी नहीं, कभी एक दफे पढ़े भी नहीं, उस पर विचार भी नहीं करें, आज्ञा व्यवस्थित नहीं हो जाएगी। का वचन तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि इसकी आज्ञा पर हम कुछ आगे चले, पढ़ तो ले आज्ञा को, लेकिन आज्ञा को माने भी विकार नहीं करते, पढ़ना कहां का बड़ी होती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये तो विशाल बुद्धि का, सुपात्रता का एक पहलू है कि विशाल बुद्धि ऐसी होने से ही तत्व की प्राप्ति होती है, वही तत्व पाने का पात्र हो सकता है। बिना विशालता ऐसी विशालता तत्व प्राप्ति की पात्रता होती नहीं।
हाँ तो एवा तो रोचक है, ज्ञान स्पष्ट काम करवा का नाम तो खबर नहीं
पड़े। एक ही वचन देखो, मुमुक्ष के नेत्र महात्मा को पहचानते हैं, हृदय में क्या क्या बात नहीं है। जब ये पंक्ति लिखी है आपने, शब्द तो उतने ही है, 6 शब्द है, 6 शब्द लिखे हैं, क्या भरा है, सारी पहचानने वाले की योग्यता ज्ञान में खड़ी हुई है। और सामने जो महात्मा है जो सुविधि को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश होता है, वो भी इनकी नजर में रखा है। 6 शब्द में ऐसा हम कहते हैं,
आज मैं वाची है पर भाव अंदर का भाष्य नहीं, बस बता रहा कोई मरे नहीं,
बढ़ जाना होता है, तो उतार लेता है, तोता बोलता है कि राम राम, क्या बोलता है राम, उनको तो यही ख्याल है कि ये कोई मिर्चा जैसी मिर्ची होगी या कोई बैंगन होगा, तो उनको तो खाने की चीज मिलती है, तो कोई ऐसी खाने की चीज, ऐसा ही लगे। हमने इसमें अति गूढ़ शास्त्रार्थ का भी प्रतिपादन किया है, ऐसे बात तो ऐसे मुद्दों से लिखी है, लेकिन इसमें गूढ़ शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ लिखा है, नहीं गूढ़ शास्त्रार्थ लिखा है, रहस्यमय बातें हमने इस पत्र में रखी है, जो मुखों के लिए परम परम प्रयोजन भूत है, प्रयोजन भूत नहीं परम प्रयोजन भूत है, ऐसी बातों को गूढ़ शास्त्रार्थ कहने में कितना वजन खुद ने दिया है कि तुम हल्की बात समझ करके, मामूली बात समझ करके उसको पढ़ लेना, तो 10 मिनट में तो हमने सारा पत्र पढ़ लिया। अरे भैया 10 घंटे में भी पूरा होने वाला नहीं है, 10 मिनट में कैसे पढ़ा, गुरुदेव कहते थे जब कोई आदमी मिल गया, अरे साहब समय साथ हमने 15 दिन में पढ़ लिया, गुरुदेव के वो हम गए, हमने तो कहते रसला कैसे, समय सर आज से आपने उनको तो 2-3 साल लग जाती है, 15 दिन में पढ़ लिया, ठीक क्या कहते थे तो उसने पढ़ा नहीं है, पढ़ डाला है। क्या कहते थे? हमने पढ़ डाला है, पढ़ करके डाल दिया। ऐसा होता है आप बारंबार विचार कीजिए। देखिए और कहते हैं, आप बारंबार विचार कीजिए। एक दफे पढ़ लिया वो बारंबार इसको तुम विचार कीजिए या ध्यान दीजिए। योग्यता होगी तो हमारे समागम में ही इस बात का विस्तार से विचार बताएंगे। जब आप लोग मिलेंगे, निवृत्ति क्षेत्र में आना जाना होगा, उस वक्त इस बात का विस्तार बताएंगे। लेकिन कब? योग्यता होगी तब। क्या कहा? योग्यता होगी तो शरद रखिए। अगर हमने योग्यता नहीं देखी तो हमारी वाणी संक्षेप हो जाएगी। लिखाएंगे हमारा कोई उदय ही ऐसा है कि सामने वाले की योग्यता नहीं देखते हमारी वाणी बहुत प्राणी को बदलने लगती है। कौन होता है? वाणी नहीं छुट निकलते हमारी, हमको भी पता नहीं चलता कि ये वाणी क्यों नहीं निकल रही है। अभी ऐसा हो जाता है। ऐसा कोई उनका निमित्त नहीं, निमित्त कैसा कोई संबंध था पात्र जी के सामने उनकी वाणी निकलती थी। पात्र जी सामने नहीं आता उनकी वाणी मौन हो जाती। लिखा है और निर्देश किया इस बात का।
हमने बना अनिवृत्त क्षेत्र में सात मली
है।
अनिवृत्त क्षेत्र में सात मली
कौन होना है? एकदम मुमुक्ष मात्र सिद्धि जो बात है पुत्र लागू करे।
सर्वांग मार्ग इसलिए दर्शित हो गया, सर्वांग मार्ग पूरा का पूरा मार्ग दर्शित हो गया।
मार्ग प्राप्ति में तो अप्रोच है, आखिर आगे आगे अप्रोच करवा दे रहा हूं। उसी लेंस से अप्रोच करना, ये सतपुरुष की आज्ञा के अनुकूल अप्रोच करना, दूसरे ढंग से अप्रोच करना नहीं चाहिए। योग्यता होगी तो हमारे समागम में इस बात को विस्तार से विचार बताएंगे। अभी हमारा समागम संभव तो नहीं है, फिलहाल हमारा समागम जो है संभव नहीं है। तो अर्थात मैंने में चिट्ठी लिख रहे हैं, परंतु शायद श्रावण वदी में करें तो विचार होगा, विचार करेंगे। मुंबई छोड़ के मुंबई से चिट्ठी लिखा है, मुंबई छोड़ के कहीं निवृत्ति क्षेत्र में जाना है तो श्रावण वद में मैंने अंदाज है श्रावण वद में शायद हो सकता है। परंतु अभी तक यह विचार नहीं किया है। अभी तक मैंने अभी लिख रहा हूँ सबको मैंने विचार नहीं किया है कि किस स्थान में हो, कहाँ जाऊँगा, किस स्थान में जाऊँगा, इसका कोई विचार फाइनल नहीं किया है। विचार होगा कि श्रावण वद में कहीं निवृत्ति क्षेत्र में जाना है, लेकिन किस स्थान पर जाना है इसका निर्णय नहीं किया। बात यह थी कि कहीं भी वो जाते तो वहाँ चले जाते थे, तो समागम करना हो तो पहुँचते थे। समागम होता रहता है, कई लोग है। क्या कहते हैं? ये हार है, ये धर्म के लायक नहीं है, धर्म के अनुकूल नहीं है, धर्म के प्रतिकूल है। कहा का मतलब ये है कि यहाँ के जो जीव है धर्म के क्षेत्र में आते हैं वे भी धर्म करने लायक आते नहीं है। ऐसे परिणाम वाले आते हैं जो धर्म की आराधना करते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। और उन्हीं प्रकार के जो संयोग भी ऐसे ही बनते हैं कि धर्मियों का पराभव हो और आराधना करने का विजय हो, ऐसा भी संयोग होता है। इसका नाम कलयुग है, इसका नाम चमकार है। कहते हैं कलयुग है इसलिए क्षण भर वस्तु विचार बिना नहीं है। वस्तु विचार तो झांकते मन पावे विश्राम। मना से वस्तु विचार बिना नहीं रहना। आत्म वस्तु का जो विचार है, हमारी आत्मा का आत्म वस्तु मैंने